एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ मेजबान वन
और मैं हूँ मेजबान टू। आज हम भौतिकी की दुनिया के एक बेहद दिलचस्प और हाँ शायद थोड़े अजीब लगने वाले विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड फाइनमैन की किताब क्यूईडी, प्रकाश और पदार्थ का विचित्र सिद्धांत के बारे में।
क्यूईडी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर यह सिद्धांत असल में ये समझाता है कि भाई रोशनी कैसे काम करती है और पदार्थ के सबसे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं।
सही कहा, ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया की एकदम कह सकते हैं बुनियादी कहानी है।
और ये कहानी आज भी उतनी जरूरी है ना, मतलब क्यूईडी सिर्फ ऐसा नहीं कि किताबों की बात हो।
बिल्कुल,
लेजर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर चिप्स हैं, अस्पतालों में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, एमआरआई या पेट स्कैन,
हाँ हाँ
ये सब क्वांटम दुनिया के इन्हीं नियमों पर चलती हैं।
और साथ ही ये सिद्धांत हमारी आम समझ को जबरदस्त चुनौती देता है, दिखाता है कि हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा अनोखी और हैरान करने वाली हो सकती है।
बिल्कुल, और रिचर्ड फाइनमैन की यही तो हासियत थी, वो ऐसे मुश्किल विषयों को भी ना बिना किसी भारी भरकम गणित के बड़े मजेदार तरीके से समझा देते थे।
हाँ, उनका अंदाज ही अलग था। तो चलिए फिर फाइनमैन के साथ इस अजीब लेकिन आकर्षक दुनिया की सैर पर निकलते हैं।
हाँ, लेकिन पहले जरा फाइनमैन साहब के बारे में थोड़ी बात कर लें। रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन 1918 से 1988 तक वो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली, मतलब बहुत असरदार भौतिक विदों में से एक थे। लेकिन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो शायद विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने वाले सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर्स में से भी एक थे मेरे ख्याल से।
ये बात तो है, उन्हें 1965 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पर उनके काम के लिए। और उन्होंने वो फाइनमैन डायग्राम्स बनाए थे।
हाँ हाँ, वो तो कमाल ही है।
एक तरह के चित्र थे जिन्होंने वैज्ञानिकों के सोचने और गणना करने का तरीका ही बदल दिया।
बिल्कुल, और वो सिर्फ थ्योरी वाले आदमी नहीं थे, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी काम किया और बाद में स्पेस शटल चैलेंजर दुर्घटना की जांच में भी उनकी बड़ी भूमिका थी।
सही, और जैसा आपने कहा, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी मुश्किल बातों को आसान बनाना। उनकी मशहूर किताबें हैं जैसे श्योरली यू आर जोकिंग, मिस्टर फाइनमैन,
हाँ वो तो बहुत मजेदार है,
और द फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। वो सच में विज्ञान की गहरी बातें और आम आदमी की समझ के बीच एक पुल जैसे थे।
उनका अंदाज ही निराला था, मतलब गहरी वैज्ञानिक सोच तो थी ही, साथ में बच्चों जैसी जिज्ञासा और एक शरारत भरा मजाक भी था उनके अंदाज में।
हाँ, वो फिजिक्स को कोई सूखा विषय नहीं मानते थे, बल्कि ब्रह्मांड की एक पहेली जिसे सुलझाने में मजा आता है।
बिल्कुल, यही बात उन्हें क्वांटम दुनिया की इस यात्रा पर हमारा हाथ पकड़ने के लिए सबसे सही गाइड बनाती है।
तो अब आते हैं किताब पर, क्यूईडी, प्रकाश और पदार्थ का विचित्र सिद्धांत। ये किताब असल में फाइनमैन का एक प्रयास है क्यूईडी की जो गहरी बातें हैं उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने का जो फिजिक्स के एक्सपर्ट नहीं है।
हाँ, ये किताब असल में 1983 में UCLA में दिए गए उनके कुछ लेक्चर्स पर आधारित है।
इस किताब का मकसद ये दिखाना है कि क्वांटम लेवल पर प्रकाश और पदार्थ का जो बर्ताव है, जो हमें बिल्कुल अजीब और नामुमकिन सा लगता है, वो ना सिर्फ सच है बल्कि हमारे आसपास दिखने वाली बिजली और चुंबक से जुड़ी हर घटना की बुनियाद है। फाइनमैन हमें एक तरह के दिमागी सफर पर ले जाते हैं।
हाँ, शुरुआत एकदम साधारण सवालों से होती है, जैसे शीशे से रोशनी क्यों झलकती है, और फिर धीरे धीरे वे बताते हैं कि ये रोज की दिखने वाली घटनाएं असल में क्वांटम दुनिया की उन अजीब प्रक्रियाओं से कैसे जुड़ी हैं।
और सबसे अच्छी बात, फाइनमैन जानबूझकर गणित के मुश्किल फॉर्मूलों से बचते हैं। वो उदाहरणों का, सोचने वाले प्रयोगों का और चित्रों का इस्तेमाल करते हैं।
बिल्कुल, इस किताब से हम फिजिक्स के सबसे कामयाब सिद्धांतों में से एक को जानते हैं, वैज्ञानिक सोच की ताकत देखते हैं और प्रकृति के जो छिपे हुए गहरे स्तर हैं उनकी खूबसूरती को महसूस करते हैं।
हाँ, वो बताते हैं कि प्रकाश असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन क्वांटम लेवल पर कैसे बर्ताव करते हैं, ये संभाव्यता आयाम या प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स क्या होते हैं,
और वो क्रांतिकारी विचार कि कण एक साथ सभी संभव रास्ते अपनाते हैं, वो तो दिमाग हिला देता है।
हाँ, फाइनमैन का अंदाज पे कमाल का था। अब देखते हैं कि उन्होंने इस किताब में इन अजीब विचारों को कैसे परत दर परत खोला है। ये किताब चार लेक्चर्स में बटी है। पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन, द फंडामेंटल मिस्ट्री।
हाँ, यहाँ फाइनमैन एक तरह से भूमिका बांधते हैं। वो मानते हैं कि भाई ये विषय मुश्किल है और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के जो अनुभव हैं वो यहाँ काम नहीं आएंगे। वो सुनने वाले या पढ़ने वाले से एक सौदा करते हैं। ये देखो, मैं मुश्किल गणित का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बदले में आपको थोड़ी देर के लिए अपनी आम समझ को परे रखना होगा।
अच्छा।
और क्वांटम दुनिया के जो अजीब नियम हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ।
वो जोर देते हैं कि मकसद ये बताना नहीं है कि प्रकृति क्यों ऐसी है।
हाँ,
ये जरूरी बात है,
बल्कि ये समझाना है कि वो कैसे काम करती है, और हर प्रयोग ने इसी कैसे की पुष्टि की है बार बार।
ठीक है, अब दूसरा लेक्चर यानी अध्याय 1, फोटॉन्स कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। यहाँ क्या है?
या फाइनमैन प्रकाश के व्यवहार का इस्तेमाल करके क्वांटम मैकेनिक्स की जो बुनियादी अजीबियत है उसे समझाते हैं। और मुख्य बात यह है कि किसी घटना के होने की संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें उन सभी मुमकिन तरीकों पर विचार करना होगा जिनसे वो हो सकती है।
सभी मुमकिन तरीके?
हाँ, वो कांच की सतह से होने वाले आंशिक परावर्तन मतलब पार्शियल रिफ्लेक्शन का उदाहरण देते हैं। जैसे शीशे पर रोशनी पड़ती है तो उसका करीब 4% हिस्सा ही क्यों वापस आता है, बाकी क्यों गुजर जाता है?
हाँ, ये सवाल तो आता है दिमाग में।
फाइनमैन बताते हैं कि क्वांटम स्तर पर हम ये पक्के तौर पर कह ही नहीं सकते कि कोई एक फोटोन यानी प्रकाश का कण टकराकर लौटेगा या पार निकल जाएगा। हम सिर्फ उसकी संभावना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं।
अच्छा, तो पक्का कुछ नहीं कह सकते?
नहीं। और यहीं पर वे किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट लाते हैं, संभाव्यता आयाम, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स।
संभाव्यता आयाम, ये क्या चीज है, थोड़ा और बताइए।
हाँ, फाइनमैन इन्हें छोटे घूमते हुए तीरों की तरह मतलब वेक्टर्स की तरह दिखाते हैं। ये तीर असल में किसी घटना के होने की संभावना से जुड़े होते हैं, पर सीधे तौर पर संभावना नहीं बताते।
अच्छा।
संभावना जानने के लिए हमें इन तीरों के साथ कुछ करना पड़ता है, और यही फाइनमैन का वो क्रांतिकारी आइडिया आता है, सभी पथों का योग, सम ओवर ऑल पाथ्स।
सभी पथों का योग मतलब?
ये क्या है? मतलब ये कि अगर एक फोटोन एक जगह से मान लीजिए बल्ब से चलकर दूसरी जगह जैसे हमारी आंख तक पहुंचता है, तो वो हर मुमकिन रास्ते से एक साथ गुजरता है, सीधे रास्ते से भी, टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी, यहां तक के फाइनमैन कहते हैं चांद से टकराकर वापस आने वाले रास्ते से भी।
क्या, हर मुमकिन रास्ता एक साथ? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है
ना? और हर रास्ते के लिए एक छोटा तीर, वो संभाव्यता आयाम होता है। उस तीर की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि उस रास्ते पर कितना समय लगा एक खास तरीके से।
तो फिर अगर वो हर रास्ते से जाता है तो हमें रोशनी सीधी लाइन में चलती क्यों दिखती है?
यही तो कमाल की बात है, यही सभी पथों का योग वाला नियम इसे समझाता है। फाइनमैन दिखाते हैं कि जब हम सभी रास्तों के तीरों को एक के बाद एक जोड़ते हैं तो जो रास्ते सीधी लाइन से बहुत दूर होते हैं उनके तीर अलग अलग दिशाओं में होते हैं और एक दूसरे को ज्यादातर कैंसिल कर देते हैं।
अच्छा, कट जाते हैं मतलब?
हाँ, कट जाते हैं। लेकिन जो रास्ते सीधी लाइन के बहुत करीब होते हैं उनके तीर लगभग एक ही दिशा में होते हैं, वो सब जुड़कर एक बड़ा अंतिम तीर बनाते हैं।
ओ।
और इस अंतिम तीर की लंबाई का वर्ग मतलब स्क्वायर ही फोटोन के उस जगह पहुंचने की संभावना बताता है। और इसी एक नियम से वो परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन जैसी सारी चीजें समझा देते हैं।
वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है, गजब। अच्छा, अब आते हैं अध्याय 2 पर, इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इंटरैक्शंस।
इस अध्याय में फाइनमैन क्वांटम नियमों को फोटोन से आगे बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन पर लागू करते हैं, और वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच जितनी भी बातचीत होती है उसे सिर्फ तीन, केवल तीन बुनियादी क्रियाओं यानी एक्शन से समझा जा सकता है।
सिर्फ तीन?
कौन सी? पहली, एक फोटोन अंतरिक्ष समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है।
दूसरे?
एक इलेक्ट्रॉन अंतरिक्ष समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है।
ठीक है।
और तीसरी, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को या तो छोड़ता है एमिट करता है या सोख लेता है एब्जॉर्ब करता है। बस
बस ये तीन क्रियाएं और पूरी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स इनमें सिमट जाती है, ये तो कमाल है।
हाँ, और यहीं पर वे अपने मशहूर फाइनमैन डायग्राम्स पेश करते हैं। ये इन तीन क्रियाओं और उनके मेल को दिखाने का एक बहुत ही आसान विजुअल तरीका है।
अच्छा, वो डायग्राम्स?
हाँ, एक लहरदार रेखा वेवी लाइन फोटोन दिखाती है, एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन इलेक्ट्रॉन दिखाती है, और जहां ये रेखाएं मिलती हैं जिसे वर्टेक्स कहते हैं वो फोटोन के निकलने या सोखने की क्रिया को दिखाता है। वे इन डायग्राम्स का इस्तेमाल करके समझाते हैं कि कैसे दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। वो असल में आपस में एक आभासी फोटोन, एक वर्चुअल फोटोन का लेनदेन करते हैं।
आभासी फोटोन, वर्चुअल मतलब ये असली नहीं होते?
ये एक तरह से बीच के संदेशवाहक कण जैसे होते हैं। हम उन्हें सीधे तौर पर देख नहीं सकते, लेकिन उनकी मौजूदगी से ही बल यानी फोर्स काम करता है।
अच्छा।
ये इंटरैक्शन के दौरान बहुत कम समय के लिए अस्तित्व में आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर असर डालते हैं।
समझ गई, ये थोड़ा मुश्किल है पर ठीक है। अब अगला अध्याय, अध्याय 3, द न्यू थ्योरी। लगता है यहाँ सब कुछ जुड़ता है।
बिल्कुल, ये किताब का क्लाइमैक्स कह सकते हैं। यहाँ फाइनमैन दिखाते हैं कि ये सारे नियम मिलकर क्यूईडी को कैसे बनाते हैं और ये सिद्धांत कितना सटीक है। वे एक जरूरी संख्या जे, जिसे कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, उसका परिचय देते हैं। ये संख्या उस बुनियादी क्रिया मतलब वर्टेक्स के आयाम को दर्शाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के फोटोन छोड़ने या सोखने की संभावना कितनी प्रबल है, उसकी ताकत।
तो ये जे क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या मतलब है?
ये जे इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बीच जुड़ाव की ताकत बताता है। ये एक छोटी संख्या है, लगभग 137 का वर्गमूल।
अच्छा, छोटी संख्या है।
हाँ, इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा बार इलेक्ट्रॉन फोटोन छोड़ेगा या सोखेगा, यानी फाइनमैन डायग्राम जितना ज्यादा जटिल होगा, जितने ज्यादा वर्टेक्स होंगे, उस प्रक्रिया की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। इससे गणना करना, कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा जटिल डायग्राम्स को काफी हद तक नजरअंदाज कर सकते हैं।
ठीक है।
फिर फाइनमैन एक और बड़ी मुश्किल का हल बताते हैं, पुनर्मानकीकरण, रीनॉर्मलाइजेशन।
पुनर्मानकीकरण, ये क्या बला है? ये तो और भारी शब्द लग रहा है।
हाँ, सुनने में लगता है। देखो, जब वैज्ञानिकों ने शुरुआत में इलेक्ट्रॉन के गुणों जैसे उसके द्रव्यमान या आवेश की गणना करने की कोशिश की, तो जवाब अनंत आ रहे थे, इन्फिनिटी।
अनंत मतलब कैलकुलेशन गलत हो रही थी।
जाहिर है ये सही नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत थोड़ी हो सकता है। फाइनमैन ने इसे सुलझाने का एक गजब का तरीका समझाया, वो भी बिना गणित के।
कैसे?
उन्होंने कहा कि ये अनंतताएं इलेक्ट्रॉन के नग्न यानी बैर द्रव्यमान और नग्न आवेश से जुड़ी हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब बिल्कुल अकेला हो, बिना किसी आसपास के कणों के असर के। लेकिन दिक्कत यह है कि हम असल दुनिया में इलेक्ट्रॉन को कभी नग्न माप ही नहीं सकते, वो हमेशा आभासी कणों के एक बादल से घिरा रहता है।
अच्छा, तो उसे अकेला मापना मुमकिन ही नहीं है।
नहीं, तो हल क्या निकला? हल ये था कि हम समीकरणों में इन नग्न मानों की जगह इलेक्ट्रॉन के वो द्रव्यमान और आवेश इस्तेमाल करें जो हमने प्रयोगों से लैब में असल में मापे हैं।
एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, जैसे हमने समस्या को बस कालीन के नीचे छुपा दिया।
हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये काम करता है। वो अनंतताएं हमारे मापे हुए मानों में एक तरह से छुपा दी जाती हैं, और बाकी की जो गणना है वो एकदम सही, सीमित और अविश्वसनीय रूप से सटीक नतीजे देती है।
ये सोचना ही अजीब है कि अनंतता को इस तरह छिपाया जा सकता है, पर अगर ये काम करता है और नतीजे इतने सटीक आते हैं तो फिर कमाल है। और कितना सटीक? आप कह रहे थे अविश्वसनीय रूप से सटीक।
हाँ, अविश्वसनीय रूप से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब वो एक छोटे चुंबक की तरह कितनी मजबूती से व्यवहार करता है। क्यूईडी इस मान की भविष्यवाणी इतनी सटीकता से करता है। फाइनमैन उदाहरण देते हैं, जैसे लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क शहर की दूरी को एक इंसानी बाल की मोटाई जितनी सटीकता से नाप लिया हो।
क्या बात है, एक बाल की मोटाई जितनी सटीकता।
हाँ, और ये भविष्यवाणी प्रयोगों से पूरी तरह मेल खाती है। ये वाकई विज्ञान के इतिहास में सबसे सफल सिद्धांतों में से एक है।
अद्भुत, ये तो सच में हैरान करने वाला है। और अंतिम अध्याय, लूज एंड्स, इसमें क्या है?
अध्याय 4 में फाइनमैन क्यूईडी को बाकी आधुनिक भौतिकी के संदर्भ में रखते हैं। वो संक्षेप में क्यूसीडी यानी क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, जो मजबूत परमाणु बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सिद्धांत है।
अच्छा।
वे कमजोर परमाणु बल वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एकीकरण इलेक्ट्रोवीक थ्योरी का भी जिक्र करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि सभी बलों को एक साथ लाने की जो कोशिश है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण भी शामिल है, वो खोज अभी जारी है। तो ये अध्याय दिखाता है कि क्यूईडी अपने क्षेत्र में लगभग परफेक्ट होते हुए भी सब कुछ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं है। अभी और भी पहेलियां सुलझानी बाकी हैं।
समझ गई। तो इस पूरी गहन चर्चा से कुछ खास बातें या संदेश क्या निकलते हैं? एक तो बिल्कुल साफ है कि क्वांटम दुनिया हमारी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग, एकदम अजीब है।
हाँ।
और फाइनमैन का आग्रह है कि हमें प्रकृति को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वो है, भले ही वो हमें बेतुकी रगे, क्योंकि प्रयोग यही दिखाते हैं। दूसरा, निश्चितता की जगह संभावना का राज।
संभावना।
क्यूईडी मूल रूप से संभावनाओं का खेल है। हम सिर्फ नतीजों की संभावना बता सकते हैं, पक्का नहीं कह सकते कि क्या होगा।
तीसरा, मुझे लगता है कि बिजली और चुंबक से जुड़ी सभी घटनाओं का एक ही आधार होना, चाहे शीशे से रोशनी का चमकना हो या अणुओं का एक दूसरे से जुड़ना, सबके पीछे वही तीन बुनियादी क्रियाएं हैं। ये दिखाता है कि प्रकृति में कितनी गहरी एकता और सरलता छिपी है।
बिल्कुल सही कहा। और चौथा, वैज्ञानिक सिद्धांत की ताकत और सटीकता। क्यूईडी की भविष्यवाणियां प्रयोगों से इतनी सटीक मेल खाती हैं कि मतलब हैरान रह जाएं। ये वैज्ञानिक तरीके की कामयाबी का बहुत बड़ा सबूत है।
और आखिर में शायद हमारी अपनी सहज बुद्धि की सीमाएं। फाइनमैन बार बार चेतावनी देते हैं कि क्वांटम चीजों को अपनी पुरानी सोच के खांचे में फिट करने की कोशिश मत करो।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
हमें गणित और प्रयोगों पर भरोसा करना सीखना होगा, भले ही नतीजे अटपटे लगें।
इस किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार भी हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, ना?
हाँ बिल्कुल, जैसे फाइनमैन का वो मशहूर कहना, मुझे लगता है मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि कोई भी क्वांटम यांत्रिकी को नहीं समझता है।
हाँ, ये बहुत फेमस है।
ये दिखाता है कि इस सिद्धांत के केंद्र में अब भी एक रहस्य है। वैज्ञानिक गणनाएं कर सकते हैं, पर वो जो क्यों वाला सवाल है, उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।
सही। एक और गहरी पंक्ति है, प्रकृति अपने पैटर्न बुनने के लिए केवल सबसे लंबे धागों का उपयोग करती है, ताकि उसके ताने बाने का प्रत्येक छोटा टुकड़ा पूरी टेपेस्ट्री के संगठन को प्रकट करे।
वाह,
ये फाइनमैन के इस विश्वास को दिखाता है कि क्यूईडी जैसे बुनियादी सिद्धांतों को समझना एक तरह से पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को उजागर करता है।
और ये सीधी बात भी, अ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स का सिद्धांत प्रकृति को सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से बेतुका बताता है। फाइनमैन इस अजीबियत के लिए कोई माफी नहीं मांगते, बल्कि इसे इस बात का सबूत मानते हैं कि प्रकृति के नियम हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे और अनोखे हैं।
बिल्कुल। और वो जो बात उनके ब्लैकबोर्ड पर उनकी मृत्यु के समय लिखी मिली थी, जिसे मैं बना नहीं सकता उसे मैं समझता नहीं हूँ।
हाँ,
ये उनके विज्ञान को समझने के तरीकों को दिखाता है। मतलब सच्ची समझ तभी है जब आप बुनियादी नियमों से घटनाओं को खुद बना सकें, या कम से कम उसकी प्रक्रिया समझ सकें, जैसा क्यूईडी करता है।
ये बहुत गहरी बात है। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? क्या ये सिर्फ वैज्ञानिकों के काम की बातें?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो तकनीकी इस्तेमाल तो हैं ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर, मेडिकल स्कैनिंग, ये सब क्यूईडी के सिद्धांतों पर ही टिके हैं।
हाँ वो तो है।
इन्हें थोड़ा बहुत समझना भी हमें आज की जो तकनीक आधारित दुनिया है उसमें ज्यादा जागरूक बनाता है।
और सोचने के स्तर पर, क्या इससे हमारे सोचने के तरीके पर भी कोई असर पड़ सकता है?
हाँ बिल्कुल, सोचने के स्तर पर भी बहुत कुछ है, जैसे अनिश्चितता और संभावना को स्वीकार करना। क्यूईडी दिखाता है कि दुनिया पूरी तरह से पहले से तयशुदा नहीं है, उसमें संभावना का, चांस का एक तत्व है। ये हमें जीवन में फैसले लेते वक्त झूठी निश्चितता खोजने के बजाय अनिश्चितता के साथ सहज होना सिखा सकता है।
और वो सभी पथों का योग वाला विचार, वो भी तो सोचने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे के पीछे कई रास्ते और कारण हो सकते हैं, एक ही चीज के होने के कई तरीके हो सकते हैं।
सही।
इससे हम किसी समस्या के बारे में ज्यादा गहराई से सोच सकते हैं, अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। ये हमें लीक से हटकर सोचने के लिए भी प्रेरित कर सकता है।
बिल्कुल, और साथ ही मुझे लगता है बौद्धिक विनम्रता का सबक भी मिलता है। विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है, हमारे सबसे सफल सिद्धांत भी शायद पूरी कहानी ना हो, अधूरे हो सकते हैं।
सही कहा।
ये हमें हमेशा सीखते रहने और अपनी गलतियों को या अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकारने के लिए तैयार करता है। फाइनमैन का वो जो व्यवहारिक नजरिया था कि जो काम करता है उस पर ध्यान दो, भले ही क्यों पूरी तरह समझ ना आए, ये रवैया जिंदगी के कई पहलुओं में काम आ सकता है।
हाँ बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मेरे लिए जो सबसे यादगार पहलू है वो क्यूईडी की अविश्वसनीय सटीकता ही है। ये सोचना कि इंसानी दिमाग प्रकृति के इतने गहरे रहस्य को इतने सटीक तरीके से समझ और बयान कर सकता है, ये विज्ञान की ताकत का जबरदस्त प्रमाण है। और ये विचार कि हर घटना असल में अनगिनत संभावनाओं का जोड़ है, ये दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यही रही कि प्रकृति हमारी आम समझ के कितनी विपरीत, कितनी अलग हो सकती है। फाइनमैन का ये कहना कि हमें प्रकृति को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसी वह है, भले ही वह बेतुकी लगे, ये विज्ञान के प्रति एक बहुत ईमानदार रवैया है मुझे लगता है।
हाँ।
ये दिखाता है कि विज्ञान रहस्यों को खत्म नहीं करता, बल्कि प्रकृति की सुंदरता और जटिलता के प्रति हमारी समझ और प्रशंसा को और गहरा बनाता है। यह हमें विनम्र बनाता है और साथ ही मानव जिज्ञासा की जो शक्ति है उसका जश्न भी मनाता है।
बिल्कुल। और ये सोचना कि ये सब जादू, ये सारी जटिलता सिर्फ तीन सरल क्रियाओं से निकलती है, फोटोन का चलना, इलेक्ट्रॉन का चलना और उनका इंटरैक्ट करना, ये प्रकृति की अंदरूनी सुंदरता और सरलता को दिखाता है।
तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर हकीकत का सबसे बुनियादी स्तर ही हमारी सहज बुद्धि से इतना अलग है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन और हमारी धारणाओं के और कौन से पहलू हो सकते हैं जो सतह के नीचे छिपी एक अलग, ज्यादा गहरी वास्तविकता को छिपाते हों।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।